ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष याद की यात्रा के साथ साथ बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा कि बाबा अविनाशी रूहानी सर्जन है, और ये सर्जन क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन लगाते हैं, वो है मन मना भव का। कभी कभी देखते हैं दुनिया में भी कोई ऐसे होंगे कहेंगे एक ही दवा सब बीमारियों की एक ही दवा है। तो बाबा कहते हैं मन मना भव अथवा बाबा को याद करना, ये सब बीमारियां अथवा जो भी विकारों के कारण तकलीफें हैं वो सब के सब खत्म हो जाती हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा शरीर भी पतित बन गया। क्यों बना? क्योंकि आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाबा अविनाशी रूहानी सर्जन आकर के एक इंजेक्शन देते हैं, वो इंजेक्शन है मन मना भाव का। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि सतयुग के बाद क्या होगा, त्रेता द्वापर कलयुग, ये ज्ञान नहीं है, बोलते रहते हैं। और सतयुग से पहले क्या था वो भी उनको पता नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण ने कैसे पद पाया वो भी उनको पता नहीं है, लेकिन तुम बच्चे ही जानते हो और तुम बच्चे ही बता सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो सबको अपने घर बार में रहना, ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ना है, घर बार में रहते हुए परिवार संभालते हुए बाबा को भी याद करना है और सेवा भी करनी है। अब हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 13 मई 2026। आज की तारीख 13 मई 2026। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम्हारे नाम क्या है, स्वदर्शन चक्रधारी। मीठे बच्चे बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। आज का प्रश्न है रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? इसका उत्तर है मन मना भाव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। दुनिया में कोई नहीं कहेगा मन मना भाव, भल गीता में पढ़ते लेकिन कहेंगे तो नहीं ना। तो बाबा कहते मन मना भाव का ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी, इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसे वो स्थानों पर जाते ना संस्कृत में श्लोक रट लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, तो बाबा कहते कुछ नहीं करना, नेचुरल है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी, इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बताते हैं तो विकारों को छोड़ती जाती। जब आत्मा को मालूम पड़ जाता है कि बाबा ने हमको ये युक्ति बताई है पावन बनाने की, तो आत्मा विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है, आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है। जब ओम शांति कहते हैं ना, तो बाबा कहते केवल बोलना नहीं, बोलने के साथ साथ वो अपने स्वरूप में भी टिकना है। तो आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरे रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम और निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहती है देही अभिमान को छोड़, क्या बनो? देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वह है ही पतित पावन। सबको पता है लेकिन बाबा बार बार पक्का क्यों करा रहे हैं? क्योंकि देह भान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह है ही पतित पावन, ये कोई भी नहीं जानते। कौन सी बात? कि हम आत्मा हैं और यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, वापिस जाना है। पल कहेंगे कुछ कुछ हो रहा है, ये होता है, तो बाबा कहते ये नहीं जानते कि अब ड्रामा पूरा होता है, वापिस जाना है। इसलिए कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। संस्कृत में श्लोगन आता ना, श्लोक पढ़ते हैं और गीता में आता है, तो बाबा कहते बाहर वाले कहते इसको मन मना भव, इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाबा जब मुरली चलाते ना, इतनी सिंपल भाषा, इतनी सिंपल भाषा होती है कि बस सब भाषाएं सिंपल, और जो कॉमन लैंग्वेज चलती है वो सब मिक्स होती है। एक बार किसी ने कहा कि भगवान ऐसी भाषा में क्यों पढ़ाते? बाबा ने कहा मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने बच्चों से अपनी भाषा में बात करूंगा ना। जब वो देखते छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को बड़ी बड़ी बात करेंगे नहीं समझेगा, उसको कैसे बात करते हैं? उसकी भाषा में मीठी मीठी बात, प्यार से बात करते ना। तो बाबा भी कहते मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, संस्कृत में बात नहीं करता, मैं तो केवल हिंदी में ही बात करता हूँ। तो बाबा कहते हैं बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इसे हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, उस समय ये चल रहा था कि गवर्नमेंट का चल रहा था कि हिंदी हो, हिंदी अभी भी ये है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो उसमें होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की अलग अलग हैं। जो जिस गांव में रहते हैं वह वहां की भाषा जानते। अभी आप देखो हर गांव में जाएंगे ना तो भल भाषा एक ही होगी लेकिन उनका प्रोनंसिएशन, उनका बात करने का ढंग जो होगा वो अलग अलग होगा। तो बाबा कहते जहाँ जो रहता है उनका वैसा ही बोलने का स्टाइल होता है। यहाँ से चले जाओ गुजरात में, एक गांव में जाओ, दूसरे गांव में जाओ, तीसरे गांव में जाओ, बिल्कुल अंतर ही होगा। तो बाबा कहते हैं जो जिस गांव में रहते हैं वह वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं, सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही भाषा थी। कौन सी भाषा होगी वहां की सचिव में? कौन सी भाषा होगी है, कौन बताएगा? देवनागरी की है ना, देवताओं की दुनिया में जा रहे वो यहाँ की हिंदी भी नहीं होगी, वहां की अलग प्रकार से भाषा होगी, बहुत मीठी, बहुत सुरीली और बहुत अनुभव कराने वाली होगी। तो बाबा कहते हैं सचिव में तो एक ही धर्म एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, ये कोई शास्त्रों में नहीं, शुरू में क्या था, फिर त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या हुआ, फिर क्या होगा, बाबा कहते ये ज्ञान शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में तो केवल कहानी सुनाते हैं, ये कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो, ना कल्प की आयु का लिखा हुआ है और ना ही किसको मालूम है कि सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि एक है लेकिन अलग अलग पार्ट कर दिए लोग, वो लोग नहीं जानते उसमें से हमारा देश, हमारा देश, हमारा स्थान। तो बाबा कहते हैं ये भी किसको पता नहीं कि सृष्टि तो एक है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, नई सो पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। जिसको इस चक्र की नॉलेज है उसको कहा जाता है क्या टाइटल होगा, अभी अपना टाइटल याद करो, जिसको इस चक्र की नॉलेज है उसे क्या कहेंगे, बोलो बोलो भट्टी वाले, बोलो क्या है आपको, माताएं बोलो, भट्टी वाले हाथ खड़ा करो, जिसको इस स्वदर्शन चक्र की नॉलेज है तो कौन हो गए, नहीं हो ना, तो जोर से बोलो, बोलो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी, बोलो, चलो अभी याद आया है, बाबा कहते पक्का करना आज का टाइटल। तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह फिर श्री कृष्ण को या विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं, उनको तो नॉलेज थी नहीं, उनके पास ये ज्ञान थोड़ी था, तो बाबा कहते उनको तो नॉलेज थी नहीं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज बाप ही देते हैं, ये है स्वदर्शन चक्र, बाकी कोई हिंसा आदि की बात ही नहीं जिससे गला कट जाए। वो दिखाते ना स्वदर्शन चक्र चलाया और दुश्मनों के गले कट गए, बाबा कहते यहाँ कोई हिंसा की तो बात ही नहीं है, यहाँ सृष्टि का चक्र घुमाना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बाकी नॉलेज के सिवा मनुष्य मात्र दे न सके, ये सब झूठ लिख दिया है, ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य मात्र दे न सके, मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते, बाबा कहते देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते, उसको भगवान नहीं कहते तो मनुष्य को कैसे भगवान कहेंगे, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, जो बाप की महिमा है वह देवताओं की भी महिमा है, देवताओं की और बाबा की महिमा कितना अंतर, देवताओं को क्या कहेंगे, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और जो बाबा की महिमा है वो तो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, जो बाप की महिमा है वह देवताओं की भी नहीं है, बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की भी वही महिमा, बाबा कहते हैं जो बाबा की महिमा है वो बच्चों की महिमा, ऐसा नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा क्या करते बच्चों को मास्टर बना देते, बाबा कहते मेरे बच्चे मास्टर ज्ञान स्वरूप है, बाबा है ज्ञान का सागर और बच्चे जो है मास्टर है, ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है, बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते, क्यों नहीं कहते कि जो बाप की महिमा है वो बच्चों की महिमा है, तो क्योंकि बाबा बता रहे बच्चे जो पुनर्जन्म लेते, मैं तो नहीं लेता ना, बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, बच्चे बाप को याद करते हैं, ऊंचे से ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है, बच्चे पावन बन फिर पतित भी बनते, बाबा ना पुनर्जन्म लेते हैं ना पावन बनते हैं, सदा पावन है, ना पतित बनते, बच्चे पावन भी बनते हैं फिर पतित बनते हैं, बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन, बाप का वर्षा भी जरूर होना चाहिए। बाप का वर्षा जरूर किसको मिलना चाहिए? बच्चों को। एक तो मुक्ति और दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। बाबा से क्या मांगते हैं? दुनिया वाले मुक्ति मांगते हैं क्योंकि वे भी तो बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के बच्चे क्या मांगते हैं? जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो जीवन मुक्ति के साथ साथ मुक्ति भी मिल जाती है। तो बाबा कहते एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति धाम और सुख धाम को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। मुक्ति तो मुक्ति कहाँ होती है? बाबा कहते हैं मुक्ति तो सबको मिलती है, मिलती है ना। बच्चों को कितनी मिलती है? बस गए हाथ लगाया फिर अपनी दुनिया में आ जाएंगे, बाकी जो हैं वो वहां पर बैठे रहते हैं। बाबा ने कहा जैसे कि वहां पर लटके रहते हैं। कभी बाबा कहते वहां पर ऐसे बैठे नील होकर के बैठे, वहां लटके हुए नील बैठे हैं, कहां बैठे उनको कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा कहते मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति किसको मिलेगी? जीवन मुक्ति किसको मिलेगी बोलो? है हाथ तो खड़ा करो, बाबा को बताओ हमें मिलेगी। बाबा कहते जो पढ़ाई करेंगे उन्हें मिलेगी, ठीक है ना। पढ़ेंगे बाबा के बनेंगे तो सतयुग में पहले पहले जाएंगे। जो सतयुग में पहले पहले जाने वाले श्री कृष्ण की राजधानी में, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, श्री कृष्ण की राजधानी में बाल गोपाल बनेंगे या क्या बनेंगे? बाल गोपाल, गोप गोपियां रास करेंगे ना, तो भट्टी वाले तो सदा करते ही रहेंगे है। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते। बाबा के टाइम पर उस समय बिरला जो है टॉप पर था भारत में, और वो लक्ष्मी नारायण बहुत भक्ति भाव वाला, बहुत लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते थे। तो बाबा कहते थे जाओ बिरला से पूछो, मंदिर तो बनाते हो क्या इनकी जीवन कहानी को जानते हो? ऐसे बाबा के बच्चे सब गए भी थे, उनसे बहुत अच्छी बातचीत भी हुई थी। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते रहते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वह ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते उनकी बायोग्राफी को तो नहीं जानते, भावना है, भक्ति की भावना है, करते रहते हैं। कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे कि गुड़ियों की पूजा हुई, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, या गुड़िया बनाते पूजा करते हैं, उनको कुछ पता नहीं, पूजा किया फिर जाकर के डुबो देते हैं। जैसे कि गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे ही पूछी फिर आपे ही पुजारी, पूछे और पुजारी में बहुत फर्क है। उनका भी तो अर्थ होगा ना कि पूछे कौन है, पुजारी कैसे बनते, बाबा के ते भी तो अंतर है ना, उसका अर्थ भी होगा। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी हैं। क्रोधी को पतित नहीं कहे, विकारी जो है जो पतित बनते हैं वो विकारी पहले बनते हैं फिर पतित बनते हैं, फिर उसके बाद क्या है क्रोधी जो है, विकार तो कैसे करते रहते हैं, क्रोध तो सामने ही करता रहता है। क्रोधी भी विकारी तो है, उसमें अंश तो भरा हुआ विकार का, विकार के कारण ही तो वो क्रोध करता है। तो बाबा कहते लेकिन अंदर भरा पड़ा है तो वो क्रोधी जो है वो भी विकारी है। तो क्रोधी जो विकारी है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको क्या मिलता है? ज्ञान। कौन सा? तुम्हें ज्ञान अमृत मिलता। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है ये भारत ही सतो प्रधान ऊंचते ऊंच था, अभी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, यहाँ तो कोई राजाई है नहीं। आज के राजाओं की भी हालत क्या हो गई है? आज के जो राजा ऐसे थे और आज तो देखो बिल्कुल साधारण, इससे तो साधारण प्रजा में भी कई इतने रिच है तो उतने नहीं है ना। तो बाबा कहते क्यों? क्योंकि आजकल कोई भी राज्य नहीं है, कोई भी राजा ही नहीं है, नाम मात्र राज्य रहे हैं क्योंकि उस वंश के हैं, लेकिन उस तरह से तो नहीं है ना। तो बाबा को कहते हैं अभी यहाँ कोई राजा ही है नहीं, ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो देखो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं। दिल्ली परिस्थान तो बनना ही है। अब दिल्ली जो है बाबा कहते राजधानी शुरू से लेकर के रही है, लेकिन उस समय ये दिल्ली नाम नहीं होगा। बाबा कहते परिस्थान बनेगा और वहां का नाम क्या होगा? क्या होगा? इंद्रप्रस्थ है। और वहां पर दिल्ली में कौन जाएगा? अभी नहीं, बाद में को, अभी नहीं जाना है, अभी तो बल चक्कर लगाओ। उस समय कौन जाएगा? सतयुग में कैसे जाएंगे? दिल्ली नाम ही नहीं होगा, है याद ही नहीं होगा कि ये दिल्ली है ना। दिल्ली नाम होगा, बोलो हम अपनी राजधानी में जाएं। दिल्ली नहीं, अपनी राजधानी। तो आपकी राजधानी कहोगे बम्बई में होगी कि नहीं? भट्टी वाले हाथ खड़ा करो, बम्बई में क्या होगा? है क्या होगा बम्बई में? है सागर होगा, है वहां घूमने जाएंगे कि नहीं? अभी तो इतना बॉम्बे फेमस है, वहां जाना है, ये जाना है, वो देखना है, वो देखना है। तो सचिव में बम्बई आपका क्या होगा? पिकनिक स्पॉट है। वहां प्लेन से घूमेंगे, एरोप्लेन से चक्कर लगाएंगे, करेंगे ना। तो वहां जाएंगे सागर को ऊपर से देखेंगे, लेकिन ऐसा सागर नहीं होगा। अम्बई तो अभी तो क्या बोले, हम नहीं बोलते, बाबा बोलते हैं ना। ऐसा है कि जो समुन्दर के किनारे हैं वो समुन्दर उनको क्या करेगा? अपने ही पेट में ले लेगा, लेकिन वो सुंदर बन जाएगा आप बच्चों के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा, बहुत सुंदर बन जाएगा। समुन्दर के किनारे जाएंगे, लेकिन जाएंगे मीठे पानी पर। समुन्दर के किनारे ऐसी हवा लेने नहीं जाएंगे और वहां ऊपर से देखेंगे, ठीक है ना, पिकनिक स्पॉट को। तो बाबा कहते हैं इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। फिर बाबा बता रहे हैं विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, दिल्ली परिस्थान तो बनना ही है, परंतु ये कोई नहीं जानते। वह तो समझते हैं कि ये नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। उस समय क्या पहले दिल्ली थी ना, बहुत एक स्थान पर डेवलपमेंट हुआ तो उसको कहा ये न्यू दिल्ली है, ये ओल्ड पुरानी दिल्ली है। वह तो समझते ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है ये भी किसको पता नहीं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे क्या कर रहे हो? नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैठे यहाँ है, लेकिन कर क्या रहे हैं? नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। कोड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था और कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म है। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं, भारत सुख धाम था ये भी भूल गए। भगवान को याद करते हैं, पुकारते हे भगवान आओ रहम करो, मर्सी ऑन मी, क्या क्या बोलते। बाबा कहते वो पता ही नहीं कि कब आएगा। बाबा कहते हैं अब रहम दिल बाप को याद करते हैं, भारत सुख धाम था ये भूल गए हैं। अब तो भारत का देखो क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है। बाबा का जन्म स्थान है और ड्रामा अनुसार बाबा को भी तरस आता है कि अपने बच्चों के पास जाओ, उनको फिर से पावन बनाओ। ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है ना, विश्व के किसी भी देश को प्राचीन नहीं कहते, केवल भारत को ही कहते हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा अविनाशी खंड है। तो बाबा कहते हैं भारत ही प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अब ये भारत बिल्कुल पट पर आकर पड़ा है, पट मीन्स एकदम टॉप से नीचे आना, जमीन पे गिर जाना, एकदम गिरावट की ओर चले जाना। तो बाबा कहते हैं भारत की हालत तो देखो, किस भेंट में, सत्यु के भेंट में, स्वर्ग के भेंट में। बाबा बता रहे हैं भल भारत के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, लेकिन बाबा जो बता रहे हैं वो स्वर्ग और सत्युग के भेंट में। अब यही भारत बिल्कुल पट पर आकर पड़ा है। गाते भी है ना, हमारा भारत देश सबसे ऊंच था। भारत की जितनी महिमा है, हम भारतवासी तो गाते हैं, विश्व के लोग भी भारत की बहुत महिमा गाते। विश्व से जो भी आध्यात्मिकता की लाइट गई वो भारत से ही गई है। भारत ही सोने की चिड़िया रहा, भारत ही आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सबसे ऊंच रहा, महान रहा, तो सारा विश्व उनको याद करता है ना। तो बाबा कहते हैं गाते भी हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर के भारत की कहानी समझाती, ऐसी कहानी कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, फिर कैसे महान बन सकता है। बाप ही आकर के भारत की कहानी समझाते, भारत की कहानी माना ही दुनिया की कहानी। भारत ही एक था, सारा विश्व एक था, तो बाबा कहते हैं भारत की कहानी माना ही दुनिया की, इसको ही सत्य नारायण की कथा कहा जाता है। बाप ही बैठ समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी हैं, परंतु उनको ये राज्य कैसे मिला। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, द्वापर के राजाओं का तो क्या है, एक के ऊपर चढ़ाई करके लिया, इस पे चढ़ाई किया, उस पे किया, तब मिला ना। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण ने या देवताओं ने राज्य कैसे लिया, उनको ये राज्य कैसे मिला, सतयुग से पहले, सतयुग से आगे क्या था, संगम के आगे क्या था। बाबा कहते उनको क्वेश्चन करो, संगम युग के आगे क्या था, कलयुग था, सतयुग से पहले क्या था। तो बाबा कहते संगम के आगे क्या था, कलयुग। ये है संगम युग जिसमें बाप को आना पड़ता। बाबा कैसे प्यार से कहानी सुना रहे, ये क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। जब कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है ना, वो जब तक भी इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक वो छोड़ते नहीं, इसलिए बाबा भी कहानी के रूप में बच्चों को सुना रहे हैं। ये है संगम युग जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तब मुझे आना पड़ता है, पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी, एक तरफ कहते युग युग आता और दूसरी तरफ कहते सर्वव्यापी। तो बाबा कहते देखो क्या मेरी गिलानी करते, मेरे लिए कह दिया है सर्वव्यापी, युगे युगे आता है, तो मनुष्य ही मूंझे पर गए हैं, तो मनुष्य ही मूंझ गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते, अब ब्राह्मण ही कहेंगे हम संगम युगे, दुनिया वालों को कौन है, तो कहेंगे अरे अरे अभी तो कल युग है, हम सब कल युग में बैठे हैं। ब्राह्मण क्या कहेंगे, हम संगम युग पर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम ही जानते हो कि संगम युग ही हो, तुम कौन हो बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां लिखा है ना, अभी सभी बोर्ड पे ऐसे लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको पूछो ब्रह्मा का बाप कौन है, शिव कौन है, शिव ऊंचते ऊंच है, पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहे। भक्ति में भी क्या कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो बाबा कहते शिव तो सदा ही पिता अनादि है, लेकिन ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो बाबा कहते शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव तो सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, बाप समझाते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाता। पहले बच्चे अडॉप्ट करते हैं ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो, ब्रह्मा किसका बच्चा? अब बाबा बच्चों से प्रश्न पूछे, तुम तो ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा किसका बच्चा, किसका बच्चा है? शिव बाबा का। ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? बाबा जब मुरली चलाते थे ना कभी कभी बच्चों से पूछते थे अच्छा बताओ ब्रह्मा के बाप का नाम, तो बाबा कहते अच्छा बताओ, बच्चों की भी बुद्धि चलनी चाहिए ना, विचार सिर्फ सुनते रहे सुनते रहे, बाबा को होता तो सुनो भी सही, ध्यान भी दो और साथ साथ पक्का भी करो और उस पे मनन भी करते चल दो। तो बाबा कहते देखो ब्रह्मा किसका बच्चा, ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? क्या नाम है? वह है शिव है, नाम भी बाबा ने बता दिया, वह है शिव निराकार बाप। सीधा शिव नहीं कहना, सीधा शिव बाबा नहीं कहना है, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव निराकार बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं और मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, ये हमारा बन जाता है। शिव बाबा को भी बहुत नशा रहता, खुशी रहती है, मैं इनको अपना बनाता हूँ ये हमारा बन जाता है। और ब्रह्मा बाबा को भी कितनी खुशी होती है कि हम शिव बाबा के बन गए। सबसे ज्यादा खुशी ब्रह्मा बाबा को क्या होती है कि शिव बाबा को मैंने अपना रथ दिया, और दूसरी खुशी क्या होती है बाबा को भी रहता है, जो शिव बाबा सुनाते पहले मैं सुनता, बच्चे बाद में सुनेंगे, फर्क है ना, कितना अंतर है। ट्रांसलेशन करते ना हिंदी से इंग्लिश, एक सेकंड का अंतर, इंग्लिश से दूसरी भाषा में करेंगे तो एक सेकंड का अंतर होता है। तो बाबा कहते देखो सबसे पहले कौन सुनता है, ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ ये हमारा बन जाता है। संन्यास धारण करते हैं, किसका संन्यास करते हैं? बाबा कहते हैं हमारा बना, इसने संन्यास किया, लेकिन किसका संन्यास किया? पांच विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार ही नहीं है, बाबा ने कभी कहा ही नहीं कि घर बार छोड़ो, घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करें, नीचे उतरना जरूर। जब शुरू में भक्ति शुरू हुई तब तो भक्ति भी थोड़ी सतो प्रधान थी, और अभी तो गंगा में जाते तो कितना गंदा पानी है, क्या हालत हो गई, जप तप करते रहते हैं, और आजकल तो जप तप कैसे करते हैं, फुर्सत ही नहीं, ऑनलाइन करते रहते, जप भी करना है गंगा स्नान करना वो भी ऑनलाइन, अब देखो भक्ति कहाँ जाके पहुंच गए। तो बाबा कहते क्या हालत, कितना भी भक्ति करें तमो प्रधान बनना ही है, नीचे उतरना ही है। भक्ति में तो भले कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करें, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? तो सिवाय बाप के कोई भी रास्ता बता न सके। बाप तो बहुत ही बिल्कुल सहज रीति बताते हैं। क्या बताते हैं? माम एकम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। अब बाबा के सामने तो हर प्रकार के गुजराती भी हैं, सिंधी भी हैं, मराठी भी हैं, हर भाषा के। बाबा उनकी भाषा में बात नहीं करते हैं, बाबा हमेशा हिंदी में बात करते हैं। यज्ञ के शुरू में आपको पता हो कि जो भी यज्ञ में हमारी दादियां बहनें आई, सब सिंधी में ही बात करती थी। तो बाबा उनको कहते थे बिल्कुल सिंधी में बात नहीं करना, हिंदी में बात करना। तो बाबा उनको पक्का कराते थे। बाबा ने भी हिंदी में बात किया, हिंदी में समझाया। और हमारी दादियां जब यज्ञ के शुरू में भारत में आने के बाद जो सेवा पर गए, तो वहां पर भी उनको हिंदी में बात करना पड़ता था। तो बाबा ने तो एक नियम बना दिया था, यज्ञ में रहते आपस में भी सिंधी में बात नहीं करो, आपस में भी हिंदी में बात करो, क्योंकि हमारे को जो अपनी कॉमन भाषा उसमें बात करनी है। तो बाबा कहते बाबा कोई गुजरातियों या सिंधियों से बात नहीं करते, बाबा तो है ही, बाबा तो आत्माओं से बात करते हैं। ये है ही रूहानी ज्ञान, शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। रूह को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बनी। शरीर तो पतित बनाया, बीमारी है तो डॉक्टर दवा देके ठीक कर देते, लेकिन पतित क्या बने? रूह ही बनी है, रूह ही पतित बना है। उनको रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। बाबा कौन है? रूहानी अविनाशी सर्जन। और आप बच्चे कौन हो? मास्टर रूहानी सर्जन। अविनाशी नहीं हो, ऊपर नीचे होते रहते ना। मास्टर सर्जन जरूर हो, मास्टर ज्ञान के सर्जन हो, लेकिन अविनाशी नहीं हो। तो बाबा कहते हैं बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं? सो तो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे। बाबा के बच्चे बनने से पहले क्या हालत था? सारा समय दुखी, घर के अंदर कुछ न कुछ चलता ही रहता अकेले। और बाबा के बने घर के अंदर भी कितना प्यार से चलते हैं ना। तो बाबा कहते तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं। इसको सॉवरेंटी नहीं कहेंगे। जब भारत एकदम संपन्न था तब था सॉवरेंटी, अभी थोड़ी कहेंगे। अभी तो हालत ही देखो, आज ये कल खत्म, आज ये, रोज नए डायरेक्शन चलते रहते। अभी क्या हाल हो गया? तेल की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सॉवरेंटी में तो सब कुछ संपन्न होता है। तो बाबा कहते इसको सॉवरेंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए ना। बाबा इतना सहज रास्ता बताते, कुछ नहीं करना है, केवल बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते उनका मानना चाहिए ना, तो उनका मानना चाहिए ना। अपने धर्म शास्त्र को ही नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की राजधानी में जाना है, वो पावन नहीं बनाता है, लेकिन बनाने वाला बाबा है। श्री कृष्ण तो पावन नंबर वन था, उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब शाम बनी है, काम चिता पर बैठ काले बने हैं, जगत अम्बा को भी काली क्यों दिखाते हैं। जगत अम्बा का मंदिर एक है कलकत्ता में, काली देवी है, उसको इतना काला इतना भयानक दिखाते हैं, उसकी जीभ जो है इतनी बड़ी डेंजर दिखाते हैं, लेकिन वहाँ की भक्ति भावना है, जब तक काली देवी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक काली देवी पे चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, तब तक समझते हैं हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई। और बाबा ने तो इसका रहस्य बता दिया है, काली देवी मीन्स अपने विकारों की बलि चढ़ानी है, अपने प्रति काली देवी बनना है, न कि औरों के लिए। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। जैसे श्री कृष्ण को काला दिखाया है वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम भी काले हो, केवल वो नहीं बने हैं, पूरी के पूरे श्री कृष्ण की राजधानी में आने वाले काले हो गए, फिर बाबा उनको गोरा बनाते हैं। अब तुम भी काले हो फिर सुंदर बनते हो, तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में एक छोटा सा मंदिर है, उसका नाम है सोनी द्वारका। तो बाबा कहते सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में सोनी द्वारका देखो। क्या था वहाँ, अजमेर में एक स्थान है बहुत छोटा सा ही है, उसमें स्वर्ग के सब दृश्य, यहाँ तक कि पुष्पक विमान सब जो कुछ ए टू जेड बहुत सुंदर छोटे 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 मॉडल हैं, तो वो सारा दिखाते हैं, पूरा गोल्डन सोने की दिखाते हैं। तो इतना छोटा सा मॉडल है, तो बाबा उस समय क्या करते थे, साकार में बच्चों को नई दुनिया हमारी कैसी है वो तो समझाते थे। बाबा हमेशा बच्चों को कहते थे जब आप जा रहे हैं तो अजमेर भी, जो दिल्ली साइड पंजाब साइड जाएंगे तो अजमेर तो रास्ते में पड़ता है, तो बाबा कहते थे वहां जाके देखो। और भी भाई बहने जाते थे वहां जाकर के देखते थे। अभी भी जैसे अच्छे अच्छे स्थान बाबा के हैं तो बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ देखने जाते हैं, अभी जहाँ जहाँ रिट्रीट सेंटर होते हैं वहां पर भी देखने जाते हैं ना। तो बाबा कहते थे तो ये मॉडल बना हुआ है, छोटा सा है, पुष्पक विमान है, देवी देवताएं हैं, गार्डन है, सबको सतयुग के पूरे नजारे बहुत सुंदर बनाए, वो कांच में बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं उसका नाम है सोनी द्वारका। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में सोनी द्वारका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। अच्छा, जिनके हीरे जवाहरातों के महल होंगे वो हाथ खड़ा करो। माताओं को तो पहला चाहिए, भाइयों को तो है ही है। माताएं महल बड़े बड़े होंगे तो क्या करेंगे, कितना बड़ा महल चाहिए हैं? कल्याण का टोटल कल्याण जितनी जगह ठीक है ना कि नहीं, इससे बड़ा चाहिए या पूरा बम्बई? जिनको चाहिए पूरा बम्बई जितना महल वो हाथ खड़ा करो, बताओ। इतनी थोड़ी सी जगह बाबा देते हैं, इतना सारा विश्व के पास है, केवल बम्बई चाहिए, बस नवी बम्बई चाहिए, पुरानी बम्बई चाहिए नहीं, बाबा को बोलो बाबा हमारे तो बहुत बड़े बड़े महल होंगे। माताएं डरती सफाई कौन करेगा है, ये डरते ना सफाई कौन करेगा, मकान कौन संभालेगा, लेकिन भूल गए हैं साइंस आपके लिए क्या क्या तैयारी करे। रॉबोट होगा फटाफट फटाफट चल के सफाई कराएगा, रॉबोट होगा आराम से आपको उड़ा देगा, हर एक को पुष्पक विमान होगा, पुष्पक विमान में बैठो बटन दबाया कि जहां भी घूमना घूम के आओ, कुछ भी काम नहीं करना है। खाना बनाएंगे कि नहीं, जो खाना बनाएंगे वो तो हाथ खड़ा करो। नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, खाना बनाएंगे। अरे अनेक प्रकार के फल मिलेंगे, फटाफट काटो और प्लेट तैयार, बनाने की जरूरत ही नहीं है, सोलार कुकर में रखो सब तैयार है, पका हुआ खाएंगे, कच्चा नहीं, नेचुरल खाना है। आजकल बहुत नेचर की ओर करते हैं, उसी में बाबा ने कहा कि नेचर की ओर करते हैं और बाबा आकर के तुम्हारी नेचर को प्योर बना देते, वो क्योर करते हैं बाबा प्योर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो तो सुंदरता देखनी हो तो अजमेर सोनी द्वारका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर भीतर के हैं, सब तमो प्रधान हैं। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे, उस दिन भी बाबा ने कहा ना, शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं तो इनके बिना भी नहीं बच्चों से मिल सकते हैं। तो बाबा ने क्या नाम रखा, बाप दादा। शिव बाबा अकेला ने, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, अगर दादा के लिए कहेंगे तो फिर शिव के पास क्या है। वर्षा मिलता शिव बाबा से, लेकिन किसके द्वारा मिलता है, ब्रह्मा के द्वारा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी। दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो नरकवासी, और तुम कौन हो, संगम युगवासी। हम सब संगम युग में हैं। तो बाबा कहते सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी, तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं समझाते, ये तुमको मुरली कौन सुनाते हैं, मुरली कौन सुनाते हैं, कौन सुनाते हैं? बताओ कौन सुनाते हैं? बोलो जोर से बोलो, शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा नहीं सुनाते। कभी कभी बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी बहुत सुना सकता है, लेकिन सुनाने वाला शिव बाबा। जो शिव बाबा ने सुना वही तो ब्रह्मा सुनाएगा। आज शिव बाबा की मुरली हम पढ़ के सुनाए हैं, तो बाबा की ना। तो बाबा कहते हैं तुमको मुरली कौन सुनाते हैं, शिव बाबा परम धाम से आते हैं। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई को निश्चय हो जाए तो बाप के मिलने के सिवाय रह न सके। तो शुरू में क्या था, जब ये ज्ञान बहने सुनाती थी तो बाबा को लिखते थे, बाबा ये बड़ा पक्का निश्चय बुद्धि है। बाबा कहते बिल्कुल ही नहीं, जिसको निश्चय हो तो कहेगा ऐसा ज्ञान देने वाला शिव बाबा धरती पर आए तो मेरे को तो मिलना चाहिए। अभी कल आपने सुना, कल जगदीश भाई जी का दिन था और कल गुरुवार है, जगदीश भाई जी के निमित्त विशेष भोग भी रहेगा। तो जगदीश भाई जी की तो कहानी सुनी है, जब वो ज्ञान सुनने आते थे, बहुत लंबी कहानी आप सबने सुनी है। ज्ञान सुनने आते थे, बहुत बहस करते थे। बहन समझाती रहती, कुंज दादी उनकी टीचर थी, दोनों भी तेज, वो भी तेज, तो समझाती रहती थी। बार बार बोले कि बाबा से मिलना है, वो कुंज दादी समझती थी, और दीदी बड़ी दीदी भी वहीं थी, समझती थी ये पता नहीं बाबा के पास जाएगा, बहस करेगा, इसको भेजना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बोलता है, बहुत बहस करता है। बहने समझते, लेकिन बाबा जानते थे। भाई बोला कि मैं जाऊंगा, फिर गए, आखिर बाबा को देखा तो सब कुछ भूल गए, बस यही परमात्मा, यही बाबा है। तो देखो जो बाबा कहते निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो बाबा से मिले बिना नहीं रह सकते। और जिनको निश्चय नहीं कहेंगे, हाँ हाँ हम मिल लेंगे, कभी तो मिल लेंगे, ऐसा बाबा बता रहे हैं, कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने सिवाय रह न सके। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर ही नहीं सकेंगे। शुरू में कैसे बाबा के बच्चों ने कैसे बाबा को पहचाना और दौड़ दौड़ करके बाबा के पास पहुंच गए, तो कहेंगे पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इनके पास हमको फौरन ले चलो। ऐसा बाप जो धरती पर आया है, स्वर्ग का मालिक बनाते, तो कहेंगे इनके पास हमें फौरन ले चलो। बाबा को कहते, जगदीश भाई कहते रहते थे, और दादियां कहती थी धीरे, थोड़ा ये समझो। फिर बाद में कहा ऐसा बाबा जो आया है उससे भी आप हमको मिलने नहीं देते। तो बाबा को देखा सब कुछ सेवा में और लगा गया और सब कुछ इतना सेवा किया। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है, वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे, वो बताते ना बैल की सवारी की शिव ने, तो भारतवासी क्या करते हैं, भारतवासी फिर बैल को तिलक दे, मंदिर में रखते हैं, समझते हैं वो लोग तो क्या घोड़े को सजाते, लेकिन भारतवासी बैल कोई बोलते ना, बैल पर सवारी थी, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो ना शिव को ना शंकर की सवारी है, बैल पर बैठ के क्या करेगा, शिव तो बिंदी है कैसे करेगा। तो बैल पर ना शिव की ना शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं, शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे। बाबा कहते उसको टांगे चाहिए ना, बैठने के लिए शरीर चाहिए, बाबा को तो है ही नहीं, ना टांगे है ना शरीर है। बाबा कहते मेरे को तो कुछ भी नहीं है, तो बाबा कहते हैं वह कैसे सवारी करेंगे, टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। अब बैल पर बैठने के लिए भी तो टांगे चाहिए ना, तो बाबा कहते टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। तो बाबा कहते मैं तो बैल पर सवारी करता ही नहीं हूँ। ये है अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा, बाप जो स्वर्ग में ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है। बाप जो स्वर्ग में ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। आज का वरदान, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। उस दिन भी बाबा ने क्या कहा, अनुभवी मूर्त को कोई हिला नहीं सकता। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती। किन किन बातों का? अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन, एक दो को देखने की बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने की बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। और जो अव्यक्त इशारा है और टाइटल जो चल रहा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अपने आप को चेक करो, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। क्या चेक करना है? अपने आप को चेक करो, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव डाल नहीं सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े से बड़े अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, सेकंड में सहयोगी बनेगी। अच्छा, ओम शांति। अभी बच्चे के भाई बहनों के लिए सूचना है, क्योंकि जब यहाँ आते हैं अच्छा सभी भाई बहने, भट्टी के भाई बहने भी, अन्य सभी भाई बहने ध्यान देंगे। सबका मन करता है कि हम बाबा के कमरे बैठे, बाबा की झोपड़ी में बैठे। बाबा का दिल विशाल है लेकिन कमरे का स्थान तो छोटा है, इसलिए जो भी अमृत वेले बाबा के कमरे योग में बैठते हैं, 3-4 मिनट तक बैठे ताकि दूसरे को चांस दें। दूसरे को चांस देंगे तो आपको और चांसलर बना देंगे बाबा, इसलिए खुद नहीं बैठे रहे। मैं तो आधा घंटा बैठूंगा, आज तो मैंने बाबा से वायदा किया तो मैं आपके कमरे में आधा घंटा बैठूंगी, ऐसा नहीं करना। जो वायदा करके बातें करते वो कमरे में बैठते सो जाते, वाइब्रेशन को खराब करते, इसलिए